जिस भाइयों और बहनों, ये एक रुकू है, इसमें दो तीन आयात कम है रुकू के अंदर, अगरचे निस्तन तवील रुकू है, और ये गालबन सातवां रुकू है जो है 69 से लेकर ये गालबन 83 आयात तक मुश्तमिल है ये रुकू। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जितने भी अल्लाह ताला की तौफीक हुई हम इस सबक में से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हमें पूरा, चूंकि पूरे के पूरा एक जो है मजमून है एक एक रुकू के अंदर, और अगर हम कोशिश करेंगे कि पूरा हम पढ़ लें, और अगर ना पढ़ सके तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी अल्लाह की तौफीक हुई उससे इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलकद जाअत रुसुलुना, वलकद और यकीनी तौर पर, लकद जो है ये देखें, ये पहले तो वाव है और के मानों में, फिर लाम जो है देखें डिफरेंट है कलर का, ये इस वजह से कि लाम, ये लाम ताकीद है यकीनी तौर पर, और कद भी जो हरफ तहकीक है वो भी तहकीक के लिए, या जो चीज जो है जिस पे जोर देना हो और जो बात जो है यकीनी हो उस पे जो है उसके लिए लाया जाता है, तो एक किस्म का ताकीद है और जो है डबल ताकीद है, और बिलाशुबा यकीन, यानी देखें इसी वजह से तर्जमे में बिलाशुबा यकीन, आमतौर पर उर्दू में इसकी जरूरत नहीं होती दोनों लफ्ज लाने की, लेकिन ये चूंकि अगर लफ्जी तर्जमा करें तो फिर जो है ये ले आए ताकि अंदाजा हो जाए कि ये दो लफ्ज आए हैं एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए, वाला का और यकीन, बिलाशुबा यकीन, जात आ गए जब आए रुसुलना हमारे भेजे हुए, रुसुलना जो है वो रसूल जो होते भेजे हुए, उसके रसूल की जमा है रसूल ना, हमारे हमारे भेजे हुए रसूल। तो यहाँ पे ये जो है अल्लाह ताला फरिश्तों को भी भेजता है जो है, और उसके जो है रसूल जो है उसके रसूल फरिश्तों में भी होते हैं और उसके रसूल इंसानों में भी होते हैं, और आगे फिर रसूलों के रसूल भी आगे होते हैं, जो आगे रसूल के का पैगाम जो है इंसानों तक लेके जाते हैं वो भी इसी तरह रसूल होते हैं। तो ये रसूल का लफ्ज जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, दूसरे रसूलों पर भी, जिब्राईल अलैहि सलाम पर भी, फरिश्तों पर भी, और आगे इसी तरह इसका इतलाक हुआ है, नाम ताकीद है ये। तो और कद जो है आपको पता है ये हरफे जो है वो तहकी के तौर पे इस्तेमाल होता है, और पुराने तर्जमे जो है उन तर्जमों के अंदर जो है कुरान मजीद में जहाँ पे लिखा होता है कद आता था, तो वहां पे लिखा होता था तर्जमे में तहकीक, तहकीक से मुराद है कि ये बात है, एक तहकीक को पहुंच चुकी है, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इब्राहिम जब हमारे पास जब आए, यकीन भेजे हुए हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहिम, इब्राहिम के पास बिल बुशरा खुशखबरी के साथ वो आए, और बुशरा जो है खुशखबरी के लिए मालूम है, इसी तरह ये बशीर खुशखबरी देने वाला होता है। पालू उन्होंने कहा सलामन, उन्होंने कहा कि सलाम हो, सलामती हो, तो काला सलामुन, तो आगे इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी कहा काला सलामुन, इब्राहिम ने कहा तुम पर भी सलाम हो, यानी तो उसने कहा भी सलाम। अब लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा फर्क आप देख रहे हैं, एक जो है कालू उन्होंने कहा सलामन सलामती, ठीक है सलामन, यानी हम तुम पे सलाम भेजते हैं, ठीक है, और जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पे जो है भी सलाम हो, तो बजाहिर लोगों को लगेगा कि ये उन्होंने भी जो है वो उन्होंने सलाम कहा जवाब, उन्होंने भी सलाम कहा मतलब वो भी, लेकिन इसमें मुफस्सिरों ने एक नुक्ता बयान किया है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब जो है वो बेहतर है, तो थोड़ा सा इसमें एक नुक्ता पोशीदा है कि बहुत ज्यादा इन आप यहाँ पे उसको अगर याद ना रखते उस नुक्ते को तो खैर है, लेकिन आप ये देख लें कि इसके अंदर ये क्या नुक्ता पोशीदा है। फरिश्तों ने कहा जब कहा सलामन, तो ये सलामन जो है देखें ये जो है फतह के साथ है, दो फतह के साथ है, तो तमीम के साथ है, हम आपको सलाम करते हैं, तो ये जो है सलामन सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं आपको, जुमले फेलिया है, तो जुमले फेलिया में जो है वो एक महदूदियत है कि हम आपको ही सलाम जो है वो कर रहे हैं इस वक्त ये इस मौके पर, तो इब्राहिम ने कहा सलामुन, तो उन्होंने जो कहा सलाम जो है ये इस्म है, सलाम इटसेल्फ, सलाम जो वर्ड है ग्रीटिंग, ये जो है ये सलामती जो है ये इस इस्म है, तो अगर कोई लफ्ज इसम से शुरू हो तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। अच्छा, जुमली इस्मिया की खासियत ये होती है कि उसमें इस्तमरार पाया जाता है, कंटिन्यूएशन पाई जाती है, दवाम पाया जाता है, कंटिन्यूटी पाई जाती है। और जो है तो उसमें जो है तो जो सलामुन कहा उन्होंने, तो उसके उनके जवाब में जो है ज्यादा कम्प्रीहेंसिव जवाब है, ज्यादा बेहतर जवाब है बनिस्बत जो है वो फरिश्तों के। लेकिन देखें कि ये जो है ये इस वजह ये जो जो अरब हजरात हैं या जो अरबी जानने वाले हैं, ये बुनियादी कायदा है अरबी का। लेकिन अगर से हम तो जाहिर है इन चीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं होते या अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी होती, तो इस वजह ये हल्का छोटा सा नुकता है। बहुत तफसीली ग्रामर का कोई बड़ा पेचीदा कायदा नहीं है ये जो है जान लेने का। फमा फिर पस, मा नहीं, लबेसा। अच्छा, लबेसा जो है वो गुजर वो भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठहरने के लिए, रुकने के लिए, कोई किसी जगह पे ठहरे रुके तो वो भी लबेसा होता है। और वो फिर नहीं रुका, अन के जा आ वो ले आया, ठीक है। तो फिर वो रुका नहीं कि वो ले आया, यानी ज्यादा देर वहां रुका नहीं मगर वो ले आया, यानी बहुत थोड़ी देर के अंदर, उसने देर नहीं लगाई लाने में कोई चीज आ गया है। लबिस यलबिस लबसन जो है ये ठहरना, रुकना, देर करना, या आप कह सकते उसने देर नहीं लगाई, वो रुका नहीं ज्यादा देर, यानी फरिश्ते जब आए, दुआ सलाम हुई, उसके बाद फिर जो है वो ले आया। बे इजलिन हनीद बे बादर भी के मैंने साथ, इजल हम पढ़ाए हैं सूरह बकरा के अंदर, बिछड़ा, हीफर जो है गाय का जो बछड़ा होता है छोटा, जो है हनीज जो है वो भुना हुआ, जो तला हुआ हो, भुना हुआ हो, इन सब के लिए हनीज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जो है ये उन्होंने काम किया। फलम्मा पस, जब फिर, फलम्मा वेन एवर, रा जब, वेन एवर नहीं, इसका मतलब है एंड देन वेन, रा जो है देखा, उसने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, ऐदिया हुम, ऐदी जो है यद, यद की जमा ऐदी, उनके हाथों को उसने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को यानी फरिश्तों के हाथों को देखा। ला तसिलो अलै, ला तसिलो, ये तसिलो जो है ये ता जो है तानीस है जो है वो की वजह से है। दोनों हाथ जहां पे इंसान के जो 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 जो, जो आजाद दो दो होते हैं तो वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो जो ऐदी होता है जो हाथ होते हैं ये भी फिर मुअन्नस। उर्दू में तो हाथ मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंसान के वो आज़ाद जो डबल होते हैं वो जैसी आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो बाजू हैं, दो पाँव हैं, तो ये सारे मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो वो दो कान हैं इसी तरह, तो ये मुअन्नस, उस वजह से ये आया है तसला। आगे असल लफ्ज तो है वसला, उनके पहुंचना जो है वसला, वसला यसलु वसलन, पहुंचना, इसी से विसाल है उर्दू में, जो मिलाप मिलाप जो होता है। तो ला तसलो कि वो नहीं पहुंच रहे, इलैहि उस तक, उस बिछड़े तक, यानी उस बिछड़े तक उनके हाथ नहीं पहुंच रहे, यानी वो नहीं खा रहे। नकिरा हूं, ये जो लफ्ज नकिरा है ये भी उर्दू का वही जो नकिर है। आज के जो सबक है इसके अंदर एक सबक ज्यादा है, नस्तन तवील है, और आज में अल्फाज बहुत ज्यादा हैं सीखने वाले, नए अल्फाज जो हैं, लेकिन ये अगर थोड़ी सी गौर करें तो फिर उर्दू में कनेक्शन काफी स्ट्रांग भी है। नकिरा वो चीज जो मारूफ ना हो, जो है वो जो अजनबी हो, जो चीज उस सबको जो है नकिरा कहते हैं। आपको पता है फिर मारूफ जो एक होता है, फिर नकरा होता है जो आम कॉमन होता है। तो उसने फिर नकिरा हूं तो उसने अजनबी जाना, हम उनको, उन लोगों को जो आए थे उनके घर में, यानी वो तो जाहिर है उनकी शक्ल में आए थे, इंसानों की शक्ल में, तो उन्होंने फिर अजनबी जाना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अजनबी जाना, नकिरा जान करो नुकरन, ना पहचाना, अजनबी ख्याल करना। वह औजसा, और ये जो औजसा ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, वजसा इसकी जो है इसके असल लफज जो लेटर्स हैं वजसा है, लेकिन इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है फेल की, औजसा, यूजस, इजास, महसूस करना। वो औ जैसा, तो उसने महसूस किया, मिन होम उनसे, खीफा खौफ, उन्होंने हजरत जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खौफ महसूस किया। कालू उन्होंने कहा, ला तखफ ना डर, इन्ना बेशक हम उर्सिलना भेजे गए हैं। ये देखो उर्सिल जो है पैसे वायस है, जो पेश से लफ्ज शुरू हो रहा हो, अगर वर्ब जो है पेश से शुरू हो तो फिर वो ایسے وائس ہوتا ہے، ہم بھیجے گئے علاقوں میں لوط، لوط کی قوم کی طرف. وامراتہ اور اس کی بیوی. اب ظاہر ہے پہلے تو ذکر کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام، تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہے. اور اس کی بیوی قائمتن، کھڑی تھی. قائم کھڑا کوئی بھی مذکر، اور قائمہ کوئی بھی کھڑی کوئی بھی مؤنث یا عورت. اس کی بیوی جو ہے وہ پاس کھڑی تھی. یہ ظاہر ہے اس نے یہ سن لیا کہ وہ جو ہے بھیجے گئے ہیں، ان یہ فرشتے ہیں. فداہقت، پاپس داہقت. اچھا یہ بھی لفظ دیکھیں، یہ اکٹھا لفظ دیکھو تو یہ لفظ مشکل لگتا ہے، اور تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ دہاکا جو ہے یہ لفظ ہوتا ہے اصل میں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. جو ہے داہک وہ دانت کہلاتے ہیں، جو انسان جب ہنسے تو جو سامنے ایکسپوز ہو جائیں، جو نظر آ جائیں، ان دانتوں کو داہک کہا جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے جہاں پہ آپ کو جب بھی پڑھتے ہیں، آپ تجوید پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس میں. اور وہ جو ہے وہ داہکا یا دہکو دہکن ہنسنا ہوتا ہے. اردو میں پھر اسے مضاہکا ہے، اور تضحیک بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، اسے نکلے ہوئے لفظ ہے. فبشرناہا، پس ہم نے جو ہے وہ فبشر، ہم نے جو ہے خوشخبری دی. کس کو؟ بإسحاقن، تو اسحاق کی ہم نے ان کو خوشخبری دی. اسے جو ہے اس کو ہا کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کو جو ہے بإسحاقن تو خوشخبری دی. ومن ورائن، ومن ورا، ومن سے ورا پیچھے، اور پیچھے سے یعنی اس کے بعد، اسحاقن اسحاق کے پیچھے، یعقوب، یعقوب کی دی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی دی. اس کا ترجمہ ساتھی پڑھ لیں گے.
اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ سن کر ہنس دی، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی.
آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے تین قوموں کا ذکر ہو چکا ہے، تو تین وہ قومیں تھیں جو رسول تھے اللہ کے، انہوں نے دعوت دی قوم کو، دعوت نے قوم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ان قوموں کو عذاب استیصال کے اندر جو ہے پکڑ لیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. لیکن بیچ میں اب حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی تھوڑی سی اس کی جو بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ دیکھیں کہ بات نوٹ کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس دی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہنسنا جو ہے کس بات پہ، کیونکہ اس کو جو ہے ہم پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں، ریلیٹ کریں گے. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ تو انبیاء اور رسل کے سلسلے کے اندر قصص النبیین میں یہ جو ہے ذکر ہو رہا ہے، ایک خاص تناظر کے اندر کہ جن قوموں نے جو ہے جھٹلایا رسولوں کی دعوت کو تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس سلسلے میں یہ جو ہے حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں ہو، نہ ان کی قوم کا ذکر ہوا ہے، نہ ان کی قوم کی کہانی ہے، نہ ان کی دعوت کی کہانی ہے یہاں پہ، بلکہ ایک اور ہی تناظر کے اندر اور مختصراً سا ایک جو ہے انٹروڈکشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وجہ یہ ہے کہ یہ آگے جو آج ہم نے جو ابھی ہم نے جو حصہ پڑھا ہے، یہ رکوع جو ہے تلاوت کی ہے، اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے. تین رسولوں کا پہلے ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہ آپ سے پہلے تھے کرونولوجیکلی، زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے آئے. بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آئے، ان کا آپ کا ذکر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بعد پھر تین اور رسولوں کا ذکر ہے، وہ آپ کی اولاد سے تھے، تو وہ جو ہے ان کا ذکر پھر ابھی جو ہے آیا، آگے آیا ہی چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ایک خصوصی نسبت بھی تھی. हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाजात भाई थे एक तो, दूसरा वो आपके जेरे साया तरबियत परवान चढ़े आपके, उन्होंने जो परवरिश की हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, और तीसरा बात यह है कि आप पर ईमान लाने वालों में जब आपकी कौम ने आपको झुठला दिया था तो आप जो है वो आपके आप ईमान लाने वाले थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर, और इस्तकामत के साथ हजरत इब्राहिम सलाम पर आपके साथ खड़े रहे। और चौथी बात ये कि जब आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से जब हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी जो है वहां से हिजरत की आपके साथ, और आपके दावती मिशन के अंदर जो है आपके दस्तों बाजू बने, तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो इस वजह से फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद नबुवत और रसालत से नवाजा, और इस इलाके में आप जो है वो इराक से हिजरत करके जब आए तो वो इलाका जो आजकल उर्दन का इलाका है या जो है वो जो है उस इलाके के अंदर किनान का इलाका जो था उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अख्तियार की, वहां पे जाहिर आबादी चली आ रही थी कुछ, वहां पे आपने जो है रहायश अख्तियार की, और जो जो ये डेड सी का इलाका आप किसे कह सकते हैं, तो इस इलाके में बहुत बड़ी आबादियां थी, यहाँ पे जो है वो बड़ी खुशहाल आबादियां थी, शहरी आबादियां थी, कई शहर जो है आपस में आबादियों की वजह से मिले हुए थे। ये जो है गोमोरा का जो शहर था और सदूम का जो शहर था ये बड़े शहरों में से थे, इसके दरमियान में बहुत सारी आबादियां थी। तो इसमें जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को आपने जो है यहाँ पे जो है दावत के लिए जो है सेटल किया, और हजरत हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जहां दावत दी, और आप बिल्कुल साथ ही इलाके के अंदर किनान के अंदर जो है रहायश पजीर जो है हुई है। तो फिर जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के लिए अजाब लेकर आए, उनकी कौम के लिए सॉरी अजाब लेकर आए कौम लूत के लिए, तो फिर साथ वो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे अपने की इसहाक की और पोते याकूब अलैहिस्सलाम की उनकी जो है बशारत भी दी आपने। तो इंसानी शक्ल में चुके आए थे फरिश्ते, तो दुआ सलाम के बाद फौरन जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी मेजबानी की फिक्र के अंदर लग गए कि मेजबानी करें। अब जो है वो मेहमानों के लिए जो है वो इससे हमें पता चलता है कि तमाम का बंदोबस्त जो है ये पैगंबरी शेवा है और नबियों का जो तरीका रहा है मेहमान नवाजी के आदाब में से है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में वाज तौर पर तालीमात फरमाई है इस बारे में। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो डरे लिखे कुरान में अभी आया है कि वो इससे उन्होंने खौफ खाया कि ये खा नहीं रहे, तो आपकी जो ये तशवीश थी इसका सबब क्या था? तो आपकी तशवीश के सबब ये जो है वो उन्होंने जब नहीं खाना खाया तो आपको लगा कि ये बड़े पुरसरार से लोग हैं जो जाहिर है हमने खाना मैंने बनाया है और खाना जो है वो नहीं खा रहे, तो ये आखिर फिर किस इरादे से आए हैं? तो मुफसरीन इसके दो जो है वो एहतमाल बयान किए, एक ये बयान किया है कुछ मुफसरीन का ख्याल है कि आप इस वजह से खौफजदा हुए कि चूंकि खाना नहीं खाया तो कहीं ये दुश्मनी और किसी बुरी नीयत से ना आए हों, क्योंकि उस जमाने में ये जो है रिवाज था कि अगर आपने दुश्मनी निभानी है किसी के साथ, कोई बुरा इरादा है करने का इरादा है, तो फिर वो उसका खाना जो है वो नहीं खाते थे, तो ये एक माजूब बात समझी जाती थी। उन्होंने कहा कहीं ये ना हो। लेकिन दूसरे मुफस्सिरीन के गिरोह का ख्याल है, और जो ज्यादा बात जो है वो राजे भी नजर आती है, वो ये थी, और इसकी ताईद इस आयत में आगे अल्फाज से भी होती है कि आप अलैहिस्सलाम के अंदेशों का सबब यह था कि वो जिन्हें इंसान समझ रहे थे कि ये फरिश्ते ना हों, क्योंकि आपको ये भी इल्म है कि फरिश्ते जाहिर खाने खाते नहीं है, जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो आपको ये अंदेशा हो कि ये फरिश्ते ना हो। अब जाहिर फरिश्ते होने से डर की क्या बात है, डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खदशा इस बात पे था, यानी उनका खदशा ये नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, बल्कि फरिश्ता ही यानी इस बात पे था कि ये फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए हैं, अब ये जब भी ऐसा होता है कि इंसानी शक्ल में आते हैं तो किसी गैर मामूली फर्ज की अंजामदेही के लिए आते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई हमसे कसूर सरजद हो गया हो, या इर्द गिर्द हमारे रहने वाली जो इंसानी आबादी है इनमें से किसी आबादी के अंदर किसी नाफरमानी के इसार हूं और अल्लाह ताला की मासीयत के, और अल्लाह ताला ने उनको सजा देने का फैसला किया हो, तो ये उनको जो है खतरा लाहक हुआ। तो आपकी जो फिक्रमंदी को देखते हुए तो फरिश्तों ने फौरन फिर कहा कि आप ना घबराएं, हमें आपकी तरफ नहीं भेजा गया। देखिए ये उससे जो है ना ये बात नजर आती है, उन्होंने कहा कि कालू ला तखब, उन्होंने कहा ना डरो, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हमें तो कौम लूत की तरफ भेजा गया, हमें आपकी तरफ नहीं भेजा गया, आप जो है वो ठीक है, आप सही हैं। तो ये बात सुनकर यानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा थी हजरत सारा, वो जाहिर ये बात पीछे सुन रही थी, जब उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं तो वो भी फिर सामने आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ नहीं बल्कि कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। तो ये वो बात सुन के हंस दी कि जो है ये हमारे लिए नहीं, हम महफूज हैं, हम जो है ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो ये तो, या फिर वो इस बात पे भी उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतफक्किर हुई है, तो जाहिर है जब उनको ये ख्याल हुआ कि वो हमारी तरफ नहीं भेजे गए, तो उनकी बीवी जो हंस दी कि ये जो मुतफक्किर होना ऐसी बात नहीं थी, ये तो किसी और की तरफ भेजे गए। और फिर जाहिर है एक बहस का रुख जो है एक उस तरह मुड़ गया जो जाहिर जो मौजू था जो इससे पहले जेर बहस नहीं था। तो जो है वो उन्होंने फिर हजरत सारा को, जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम हंसी और सामने भी थी तो फरिश्ते, उनको पता भी चल गया कि ये फरिश्ते हैं, तो फिर फरिश्तों ने हजरत साक और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। अब ये सवाल पैदा होता है कि फरिश्तों ने बेटे और पोते की खुशखबरी सारा को ही क्यों सुनाई, हजरत सारा रजी अल्लाह तआला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं सुनाई? तो इसका जवाब जाहिर एक तो यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही मौजूद थे और उनका बेटा सारा का बेटा जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बेटा है, लेकिन खास तौर पे एड्रेस जो किया फरिश्तों ने वो हजरत सारा को किया। उसकी ये वजह भी थी कि हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस वक्त तक 100 साल के करीब जाहिर बाइबल की जो जो एजेस जो उन्होंने लिखी उम्रें लिखी हैं उनके मुताबिक 100 बरस के करीब उनकी उम्र थी, उस वक्त तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उनको बताया कि तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा और ये एक बेटा देगा, उसके बाद ये बेटा उसके उनका पोता होगा, ये सिलसिला चल निकलेगा। और जो है वो ये भी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो पहले से बेटा था हजरत हाजरा से, जो है वो हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो वो उस वक्त हुए थे जब उनकी उम्र 86 बरस थी, तो जाहिर है वो तो पहले बेटा था, तो हजरत सारा का चूंकि नहीं था औलाद, तो इस वजह से हजरत सारा सारा को जो है इसकी बेटी थी। तो मैं कालत, उसने कहा, उसने कहा लत, देखिए उस औरत ने कहा, जाहिर ये हजरत सारा है, या वैलता, ए मेरी कमबख्ती, हाय मेरी कमबख्ती, हाय मैं हाय हाय मैं, यानी ये जो वैलता है ये हरफे ताज्जुब और हैरत के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर बाजों का हसरत होती है बाजों का मसरत होती है, तो जाहिर है यहाँ पे ये इसमें मसरत भी है ये बात सुन के और हैरानी भी है। तो ये इसका तर्जमा वाय हैरानी, ओ हैरानी, हाय हैरानी, ये जो है तर्जमा किया जा सकता है। ये लफ्ज जो वैलता है ये असल में वैलती था, मेरी मेरी जो हैरानी, वाय हैरानी, मैं मेरी कमबख्ती। तो अफसोस या हसरत जो है जिस मानों के अंदर भी हो या मसरत की, तो वैलता जो है ये वैलती है, इसकी आवाज को खींचने के लिए, वैलती की आवाज जो है ना छोटी या की वजह से गिर जाती है वैलती, तो इसकी आवाज को खींचने के लिए या को अलग से बदल के वैलता, तो आवाज जो है बदल के लंबी हो गई, ठीक है, इस वजह से फिर जो है ये बदल गया, वैलती जो था वैलता में बदल गया। और वैल के मतलब जो है तबाही और हलाकत होती है, लेकिन यहाँ पे हैरत और ताज्जुब के मानी के अंदर है। आ पहला दो आ है यहाँ पे, देखो पहला आ है क्या, आगे है अले दो, ये जो अगला आ है ये उसके ये जो फर्स्ट पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का मैं के मानों में, आगे है ले दो आले दो, यानी पूरा तो लफ्ज आले दो है, ये वालदा जाले दो, वालदन जो होता है विलादतन बच्चा जनने के, तो आले दो क्या मैं बच्चा जनूंगी, वह अना और मैं हूं उजूजुन, अजूजुन मैं हूं बूढ़ी, यानी मैं मेरी उम्र तो अब गुजर गई है। और ये जो लफ्ज होता है अजूज होता है ये मर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये जो है औरत के लिए इस्तेमाल होता है और बूढ़ी औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आजिज से है, इन बहुत सारे उमूर की अंजामदही से जो माजूर हो जाए बंदा या जो बच्चा जनने से माजूर हो जाए तो वो जो है अजूज कहलाती है वो औरत, दारबीन उपाजल के बाद की जो एज होती है वो उसमें आप उसको अजूज कह सकते हैं। वहादा बाली और ये है मेरे शोहर, शेखन जो बूढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं। अब ये जो लफ्ज बाल है देखिए ये वो शोहर के लिए और भी बहुत सारे लफ्ज जो है इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद के अंदर और भी, लेकिन उनमें से एक लफ्ज जो है बाल है, बाला जो है एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है, और ये खास किस्म का शोहर या जाहिर है جب بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کے لیے آتے ہیں تو پھر ان میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے. تو بال جو ہے ایک خاص قسم کا مشہور ہوتا ہے, اور اگر اس کا ورب ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے بالا, کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قبیلوں کا آپس میں, ایک قبیلے کا دوسرے قبیلوں میں آپس میں رشتے ناطے طے کرنا. تو پھر بال وہ شوہر ہوتا ہے جس نے اپنے قبیلے سے باہر دوسرے قبیلے میں شادی کی ہو, تو وہ بال جو ہوتا ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوہر جب تک بیوی کے ساتھ جو ہے صحبت نہ کر لے اس وقت تک بال نہیں کہلاتا. یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں, حدیث مبارکہ میں یہ اس کی جو ہے وہ آئی ہے تشریح. اور بال سے بالا جو ہے وہ پھر بیوی ہے اس کی زوجہ. اور شیخ جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بزرگ کے لیے, چاہے یہ بزرگ عمر کے لحاظ سے ہو یا پھر علم و فضیلت کے اعتبار سے. آپ کو پتا ہے جو بھی شیوخ یا شیخ ہوتے ہیں اگر وہ علم جو ہے رتبے پہ ہوں تو بھی انہیں شیخ ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے, یا انہیں معاشرے میں فضیلت ہو تو بھی شیخ لگایا جاتا ہے. تو اور شیخ عمر میں بھی اگر ہو تو پھر اس کے لیے بھی شیخ لگایا جاتا ہے. تو وہ جو ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم پڑھا ہے اسی سورہ ہود کے شروع کے اندر ہم نے پڑھا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے یہ جو مجھے جو ہے وہ ہود اور اس کی جو ہے وہ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا, تو وہاں پہ لفظ شیبہ آیا تھا. شیبہ وہ بوڑھا ہوتا ہے جس کے بال سفید ہو جائے عمر کی وجہ سے, وہ بوڑھا ہوتا ہے. تو دونوں کے اندر جو ہے تھوڑا سا فرق بھی ہے. نہازہ بے شک یہ چیز تو لشائی عجیب, بڑی عجیب ہے. انہوں نے کہا یہ تو بھائی میں 100 سال کی عمر میں میں اب تو جو ہے عجوز ہو گئی ہوں, پیرو پازل ایج میری کب سے ہو رہی ہے, اور میں جو ہے یہ میرا شوہر ہے بوڑھا ہے, اور جو ہے یہ عجیب بات ہے. قالو انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا, آ کیا تاجبین تاجبین, کیا تم جو ہے تعجب کرتی ہو, من امر اللہ, اللہ کے حکم میں, اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو, رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, و برکات ہو اور اس کی برکتیں ہوں, علیکم تم پر, اہل البیت اہل بیت. یعنی انہوں نے جو ہے اب دو ہی بندے جو ہیں وہاں پہ کھڑے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ, دو کھڑے اور ان کو جو ہے اہل بیت کہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے یا شوہر یہ اول درجے کے اندر اہل البیت, تو یعنی اہل البیت کا لفظ جو ہے یہ بندے کی نسبت سے ہے, جو ایک جو ہے گھر کا جو مالک سربراہ ہے اس کے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوگا وہ ان کی بیوی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, اگرچہ اس کا اطلاق پھر ایکسٹینڈڈ اس پہ بھی ہوتا ہے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی, حضرت علی کو بھی, حضرت حسن حسین کو بھی, ان کو بھی فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو جو ہے یہ اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. انہو بے شک وہ حمیدن, وہ حمد کیا گیا ہے, بڑا قابل تعریف ہے, مجیدن بڑی شان والا ہے اللہ تعالیٰ. فلما جب, پھر جب, ذہبہ چلی گئی, ذہبہ جذب و ذہابن چلے جانا, اس ذہب کے معنی کے اندر دو چیز دو معنی ہوتے ہیں, ایک چلے جانا اور دوسرا حسن و تازگی, اور اسی وجہ سے پھر اس دوسرے معنی کے حساب سے ذہب کا معنی سونا پھر ہوتا ہے گولڈ. ان ابراہیم, ابراہیم سے جب چلی گئی, الرو رو جو ہے ڈر یا گھبراہٹ خوف, جب دور ہو گیا, وجاءت البشرا اور پھر آ گئی اس کے پاس خوشخبری جو فرشتے لے کے آئے تھے, یجادلنا وہ مجادلہ کرنے لگا ہم سے, وہ بحث کرنے لگا ہم سے, جادلہ یجادل مجادلتن یہ باب مفالہ ہے, مجادلہ مباحثہ یہ سارے جو ہے مجادلہ مناظرہ ایک ہی اس وزن پہ ہوتے ہیں, ہم سے بحث کرنے لگا کہ قوم لوط ان قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم, لحلیم یقینی طور پر بڑا حلم والا, بردبار تحمل والا, بردبار متحمل مزاج. جو ہے حلم جو ہوتا ہے یہ انسان کے نفس اور طبیعت کا ضبط ہے, جس کے اندر بڑا ضبط پایا جاتا ہے نفس کے اندر بھی طبیعت کے اندر بھی, جو عقل مند ہے, جس کے اندر متانت ہے, سنجیدگی ہے, جو چیزوں کو دیکھتا ہے وہ حلم حلیم ہے. اور حلم جو ہے قرآن مجید میں سن بلوغت کے لیے استعمال ہوا ہے, ظاہر ہے جس میں عقل متانگی متانت اور سنجیدگی پائی جائے, بلوغت ایڈلٹ ہولڈ جو ہے وہ جس میں شام جو ہے وہ آ جائے. اسی وجہ سے اس سے ایک اور لفظ بھی نکلا اردو کے اندر احتلام, وہ شخص جو بلوغت کو پہنچ جائے پھر وہ بھی حلم سے یا حلم سے پھر جو ہے نکلا ہوا لفظ ہے, سن بلوغت کے معنی میں پایا جاتا ہے. اواہن, فرمایا ایک تو وہ حلیم ہے بڑا, پھر اواہن آہ بڑی آہیں کر بھرنے والا ہے, نرم دل ہے بڑا, منیب رجوع کرنے والا, اجابت آہ جو ہے یہ اواہن جو ہے آہ, یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے अलिफ मद और हा जबर आहा, ये है आहें भरना, ये वर्ब है, ये जो है फेल है अरबी का। इसमें मतलब दर्द महसूस करना, आहें भरना बजरिए सांस किसी, जो आपको पता है जब इंसान तो बड़ी दर्द की कैफियत में हो या किसी इसकी कैफियत में हो तो फिर वो जो है वो बजरिए सांस जो है आह भरता है। तो उसी से फिर अवाह, बहुत ज्यादा आहें भरने वाला, मुबालिगे किसी का, यानी बड़ा नरम दिल। और फिर मुनीब जो है इसी लफ्ज, इसी यानी ये जो उर्दू में आह निकला हुआ लफ्ज है इसी से निकला हुआ है, ये भी मुनीब जो है अनाबतन से निकला हुआ लफ्ज है, जो अल्लाह ताला की तरफ अनाबत रुजू जो है वो करे, वो भी बड़े अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे वो। या इब्राहिम, ए इब्राहिम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आरिफ एराज कर, तू इसको छोड़ अनहाजा, इस बात को, इससे एराज कर, इस बात से किनारा कशी कर, परहेज कर, ये जो तू हमारे साथ जो बहस मुबहसा कर रहा है। इन्नहू बेशक वो, कद यकीनी तौर पर, जा अमरो रब्बे का, हकीकत ये है, यानी बेशक हकीकत ये है कि ये वाला कद जा, ये आ गया है अमरो, ये अमर जो है आ गया रब्बों का, तेरे रब का हुक्म, ये अमर जो है आ चुका है, तेरे रब का वादा हुक्म अमर ये आ चुका है, बस ये डिसाइडेड है। वह इन्नहुम, और बेशक वो, आतीहिम अजाब, अब जो है इन्नहुम इनके ऊपर बेशक अजाब आकर रहेगा, यकीनन आती हूँ इन्नहुम, और यकीनी तौर पर इनके ऊपर आती हूँ अजाब, अजाब आकर रहेगा। वो अजाब की क्या, वो क्या है, उसकी खसूसियत क्या है, गैर मरदूद, वो गैर मरदूद है। वो मरदूद क्या होता है, लौटाया जाने वाला, रद्दा जरुद्दो रद्दन, रद्द कर देना, लौटा देना, मरदूद शैतान को इसी वजह से कहा जाता है, लौटा दिया गया अल्लाह ताला के दरबार से, लौटा दिया गया, भगा दिया गया, लौटाया जाना। तो ये जो 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 अजाब होगा, ये टाले, ये लौटाया ना जाएगा, टलेगा नहीं, ये नहीं, गैर मरदूद का ये मतलब है, ना लौटाया जाने वाला। जिम्मा पढ़ दे साथी इसका।
वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूंस हो गई और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर तहज्जुब करती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह नहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बिशारत से इनका दिल खुश हो गया तो इसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा हलीम और नरम दिल आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इससे कहा, या इब्राहिम इससे बाज रहो, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे से नहीं फिर सकता।
अब देखें कि यहाँ पे खास बात की गई है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो, उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से झगड़ा शुरू कर, अल्लाह ताला से झगड़ा कौन कर सकता है, लेकिन ये इस वजह से ये बात जानने की है ये कि यहाँ पे ये जो पहले तो इससे पहले देख लें कि हजरत सारा रजी अल्लाह ताला का ताज्जुब है कि जब उन्होंने जो है वो बेटे की खुशखबरी सुनी तो उन्होंने तजुब का इजहार किया। तो उन्होंने तजुब का इजहार का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि वाकई ये मेरी कमबख्ती आ गई है, बल्कि वो तो जाहिर है इसका 100 साल से इस चीज का इंतजार कर रही थी, तो उन्हें बड़ी मसरत भी हुई। लेकिन जाहिर है अमूम औरतें फिर जो है उनका जो है इजहार ख्याल इसी तरह किया करती हैं तजुब का, कि जो है वो यानी ये लफ्जी मुराद मानी मुराद नहीं है मेरी कमबख्ती से, मुराद ये नहीं होता मेरी तो कमबख्ती आ गई है, बल्कि ये इजहार तजुब का एक जो है उसलूब है। और उसके पीछे ये ख्वाहिश भी थी कि बशारत के जहूर के अंदर जो बजाहिर रुकावटें नजर आती हैं, ये जो बजाहिर ऐसा होना मुमकिन ही नजर आ रहा, तो उसकी वो जो है आप कह लें कि यकीन दहानी भी चाहती थी कि वाकई ऐसा हो चुका। कि मसलन आप उम्र रसीदी थी, उम्र रसीदा थी, जाहिर है एक मुय्यन मुद्दत के बाद औरत का हैज खत्म हो जाता है, मेनोपॉजल स्टेज में औरत चली जाती है, उसके बाद उसका हमल का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसके बारे में फिर वो इत्मीनान चाहती थी कि वाकई ऐसा जो है होगा, ये बशारत पूरी होगी। अब इस्लामी तफसीरी रिवायात जो है और इंजील में, खास तौर पर इंजील में जो अहदनामा अतीक है, तौरात जो है उसकी रिवायात के मुताबिक हजरत सारा की उम्र उस वक्त 100 साल के लगभग थी, 99 या 98 बरस बताई गई है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 100 बरस से ऊपर 120 बरस या इस तरह की बताई गई है। तो इससे पहले हजरत इस्माइल की विलादत भी इसी तरीके से एक वो भी मोजन जो हो चुकी थी कि आपकी उम्र जब 86 बरस थी हजरत इस्माइल, हजरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस वक्त जो है वो, तो वो فرشتوں نے حضرت سارہ کے حیرت استجاب کو دیکھا تو پھر انہیں بڑے ادب سے توجہ دلائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تعجب کیسا، بے شک اس عمر میں انسان کی اولاد بالعموم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی مشکل نہیں ہے. تو جب آپ نے فرمایا کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم یا اہل البیت، میں جو ہے یہ علیکم جو ہے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، جمع مذکر کا صیغہ لایا ہے، تو عربی زبان میں انداز خطاب کی بڑی شائستہ مثال ہے یہ کہ عورتوں کے انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی ایک شان موجود ہے. کہ آپ نے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کس قسم کی عورت ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اندر تم جو ہے وہ تو ایسا کرتی اور تم جو ہے عورت ایسے اور نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے مجموعی طور پر آپ سب کو، آپ کو اور آپ کے شوہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کو بھی، دونوں کو بھی نہیں جو ہے صیغہ متعدد کیا، بلکہ جمع کا صیغہ اور اہل البیت کا صیغہ استعمال فرمایا کہ آپ اہل بیت اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو ہے بیان کرنے کا، جو ہے اس سے بہت سارے نکات بھی نکلتے ہیں. اب جو ہے یہ جو جدال کا مفہوم، جیسے میں نے کہا کہ جدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی جھگڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا، بلکہ یہ بحث تھی. اور بحث بھی، اب ظاہر ہے یہ جو بحث اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں وہ محبت اور ناز کا تعلق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بحث جو ہے شروع کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار تھا کہ جو ہے تم اگر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہو، وہاں پہ جو عذاب لے کے جا رہے ہو، تو وہاں پہ تو ایمان والے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے جو ہے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ قوم جو ہے خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے، اس کے جرائم بڑے حد سے گزر چکے ہیں، اب کسی رعایت کی یہ مستحق نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ریپیٹڈلی اور بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے یہ درخواست کی کہ پروردگار اگر تھوڑی سی بھی بھلائی ان کے اندر کوئی باقی ہے ذرا سی بھی، تو ان کو ذرا سی اور مہلت دے دے اور شاید وہ بھلائی اختیار کر لیں. دیکھیں آپ کا جو اخلاص تھا اور آپ کی جو ہمدردی تھی، بے شک یہ بڑی ایک برکردار جو ہے وہ قوم تھی، اور جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب ابھی نہ آئے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان ابراہیم علیہ حلیم اللہ المنیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور جو ہے بڑے ہی جو ہے نرم دل اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو یہاں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی یہ جو تفسیر قرآن مجید نے اس کی تفسیر نہیں بتائی، کیونکہ اس میں اس نے بہت زیادہ جو ہے صرف یہ بتا دیا کہ مجادلہ کیا، لیکن اس مجادلے کی تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر بائبل کے اندر جو ہے کتاب پیدائش جو ہے حضرت عتیق کے اندر جو چیپٹر آف جینیسز ہے، جو بک آف جینیسز ہے، اس کے اندر آئی ہے. تو انہوں نے کہا، ابراہیم اسلام نے کہا کہ اگر ان بستیوں میں 50 آدمی بھی راست باز ہوئے تو پھر بھی کیا تم جو ہے اس کو جو ہلاک کر دو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر آپ نے پوچھا کہ 40؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر کہا کہ 30 اگر ہوں؟ تو پھر کہا نہیں. اور پھر 10 کا، اور پھر آپ جو ہے 5 پہ آ گئے. میں کہ 5 اگر لوگ ہوئے ایمان والے تو تم تو ہلاک کر دو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ وہ فرمایا کہ یا ابراہیم وارد انحاذہ، اے ابراہیم تم چھوڑ دو، اس بحث کو چھوڑ دو، یہ تمہارے رب کا فیصلہ اب آ چکا ہے کہ ان بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور بائبل کے مطابق آپ کی دو بیٹیاں تھیں، ان کے علاوہ کوئی متنفس اب رست باز جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا، اب جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی جیسی قوم ہے. اور قوم لوط جیسی ناہنجار اور سرکش اور بد کردار قوم کی سفارش میں بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے سفارش کر رہے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے. تو آپ نے اس سفارش کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو مجادلہ کیا ہے، اس میں آپ نے اپنے دل کو نچوڑ کے رکھ دیا. اور یہ ان کے کردار اور شخصیت کا وہ پہلو ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ انہیں ان آیات کے اندر فرمایا ہے. یہاں پہ ان ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی گواہی دی گئی ہے، ان ابراہیم لحلیم اللہ المنیب، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں دیکھ کر، یعنی وہ دلسوزی کرنے والے تھے کہ یہ قوم کیا، قوم کی کمبختی آ گئی ہے، آپ رحم دل تھے، بردبار سے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے تھے، اس کی طرف پلٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فرمایا ولما جا، ولما جاعت، اور ولما جاعت، یہ جاعت جو ہے فیمنن کا صیغہ ہے، یہ رسلنا، رسل جو ہے رسول، یہ بھی جو ہے فیمنن کا صیغہ ہے، رسول جو لفظن فیمینن ہے، لفظن کا مطلب ہے رسول کی جمع جو ہے یہ بروکن پلورل، بروکن پلورل رسول، रसूल की जमा जो भी ब्रोकन प्लूरल होते हैं तो वो जो है वो फिर फेमिनिन होते हैं, तो जा तैतानीस की वजह से जब आ गए, फिर जब आए या आ गए भेजी हुई हमारी यानी फरिश्ते लूतन लूत के पास, सी अबेहिम, तो बड़ा नागवार गुजरा उनका उनको उनका आना। तो सी अन जो सी ये वो यसू है, सा आ यसू, सौ अन सौ अन, आपको पता है सौ उर्दू में हम पहले भी पढ़ रहे हैं, बुरा होना, बुरा करना, परेशान होना, घबराना, सौ कोई चीज जो बुरी हो, ओलमाए सौ जिसे कहते हैं, जिसे हम गलती से ओलमाए सू पढ़ते हैं, ये ओलमाए सौ है, वही जो है मतलब बुरे बुरा। तो उनको बहुत बुरा लगा जो है उनका आना, तो वदा का, और उनका दिल जो है भीख, जो है हम पढ़ते रहे उर्दू के अंदर पहले भी, तंग होना, बेहिम, और उसका दिल तंग हुआ, जरा लिहाज कमजोरी के। अच्छा ये जो दा का दरअन जो होता है ये पूरे का पूरा एक जो है जबरुल मिसल होती है, हम इसको देखें पहले तो वर को देख ले, दा का जुदी को दीकन या दैकन दोनों जो है ये मसर होते हैं, तंग होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपकी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिक मिन दीक दुनिया व मिन दीक यौमुल कयामा, मैं दुनिया कयामत के रोज भी और दुनिया के अंदर भी जो तंगी है उससे जो है तेरी पनाह चाहता हूँ। और जरा जो है ये आप अगर आप देखें ये दीक तो उर्दू में हो गया, फिर जरा भी उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, दोनों लफ्ज दा का दरन एक खास जो इस्तेलाह है और इसके दोनों अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जरा जो है ताकत कमजोरी गुंजाइश के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में जरा हाथ के मानों में आता है, ये इतने जरा है, मुझे शहरों का पता नहीं है लेकिन जो लोग गांव के अंदर रहते हैं उनको पता होगा कि ये लंबाई मैयर करने का एक पैमाना लोगों के लिए, इतने जरा है, इतने जरा है, वो जो जरा है वो यही जरा है, कुरान वाला जरा है। ये कहते हैं जो कोनी होती है इंसान की, कोनी की जो आखिरी है, तो अगर इंसान हाथ खड़ा कर ले यानी हाथ दोहरा करके अपने सामने खड़ा कर ले, तो जो कोनी की आखिरी हड्डी है उससे लेकर दरमियानी उंगली का जो आखिरी हिस्सा है ये लंबाई है, एक लंबाई का एक पैमाना है, इसको जरा कहते हैं, एक हाथ कहते हैं इसको, तो जो है लंबाई की ये इस्तलाह है। अच्छा तो जो 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 जबर मिसल है अरबी के अंदर वो है दा का दरा, हाथों की कोनियों का तंग हो जाना, हाथों की कोनियों का तंग, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी काम को सर अंजाम देने की ताकत ना होना, तो यानी तंगी होना और कमजोरी होना, तो उन्होंने कहा तंग होते हुए उनके आने से बलिहाज कमजोरी के, कि नहीं बड़ा मैं तो बड़ा कमजोर हूं, मैं सूरत हाल को जो है हैंडल नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी कुवत नहीं है कि मैं इस सूरत हाल को, इतनी बुरी कौम को जो मेरी मुखालिफ है, मैं इसको कौम को जो है वो फिर इसको सामना करूं या इसको अवॉइड कर सकूं सिचुएशन को। वकाला, और उन्होंने कहा हाजा जोमु नसीब, उन्होंने कहा काला हाजा ये तो बड़ा जोम असीब है, बड़ा सख्त दिन है, मुश्किल है। अब असीब ही देखें, असीब उर्दू में इस्तेमाल होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो वो करें, असब जो है उर्दू में पट्ठों को कहते हैं, आपको पता है असब जो बीमारी होती है पट्ठों की बीमारी, असीब जो है, अच्छा इसका असबा जो होता है वर्ब होता है कस कर बांधना या घेर लेना, तो असब पट्ठों को इसलिए कहते हैं कि देखो वो जो है वो जोड़ों के साथ वो पूरी बॉडी को जो है वो बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो इस तरीके से असब जो उनको कहा जाता है इसी वजह से। वजाअहू, और आए आए उसके पास, वजाअहू और वो आए उसके पास, कौमहू उसके कौम के लोग, उसकी कौम के लोग उसके पास आए, युहराउना इलैही दौड़ते हुए, बड़े बेख्तियार दौड़ते हुए, ये जो हरा युहरा हर तेजी से दौड़ना और अहरा जो फोर्थ फॉर्म होती है तेजी से दौड़ाना, तो इन दोनों का जो है ये दोनों मुमकिन तौर पर युहराउना जो है दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों हो सकते हैं जो है इस्तेमाल मतलब इससे लिए गए हो सकता है, और तेजी से इस तरह दौड़ते हुए आए, ये कुरान मजीद में सिर्फ इसी मानों के दस जगह इस्तेमाल हुआ है। वह मिन कबलो, और इससे पहले भी तानू वो लोग थे, या मलूना अमल करते, सयाद बुरे अमल, उससे पहले भी वो बुरे अमल करते, यानी ये एक जो अमल था जो उनके अंदर बुराई थी ये वो नहीं थी, इससे पहले भी और भी बहुत सारी बुराइयां थी। पाला, उन्होंने कहा जाओ कौम है ए मेरी कौम, हा उलाए बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, हुन्ना इनके अंदर बेटियों के अंदर इनमें अतहरो लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीजा है, ताहिर पाकीजा, अतहर ज्यादा पाकीजा, फत्तकुल्ला पस अल्लाह से डरो, वला तुखजूनी और मुझे रुसवा ना करो, फी दैफी दैफ दयूफ मेहमान, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जो है मुझे रुसवा ना करो, लईसा, क्या नहीं है मिनकुम तुम्हारे अंदर रजुल रशीद कोई भला आदमी। ये भी एक जरबुल मिसल आप कुरान मजीद में इस्तेमाल के बाद दुनिया में इस्तेमाल होती है, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद तुम्हारे अंदर कोई एक भी सेन आदमी नहीं है, अकल वाला आदमी नहीं है, रास्त बाज हिदायत याफ्ता रुश्द को पहुंचा हुआ। इसका तर्जुमा पढ़
और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा, आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेख्तियार इसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले ही वो ऐसी बदकारियों के खोगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं?
जज़ाकअल्लाह। अब फरिश्तों की आमद पर हजरत दरूद-ए-सलाम की तशवीश हुई। आपको पता है कि हजरत दरूद-ए-सलाम की कौम जो है वो जहम जिस परस्ती के दर मुबतला थी और वो दौड़े हुए आए, और ये फरिश्ते जो थे ये खूबसूरत कम उम्र लड़कों की शक्ल के अंदर थे। बहुत बड़ा इम्तिहान समझा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना, और दरअसल ये भेजे इसलिए भी गए इस शक्ल के अंदर कि इस सरकश कौम को आखिरी तौर पर मुजरिम साबित करने के लिए, उनके हुज्जत तमाम करने के लिए जो है ये आए, ताकि ये अपनी बुराई का इजहार अच्छी तरह कर ले। और उन्होंने जिस बुराई का इजहार किया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मकाम पे और दूसरे मकाम के अंदर भी, आपको पता है पिछली दो सूरतों के अंदर भी हम इनका अहवाल जो पढ़ा है, तो उन वो अब उनकी हालत ये हो चुकी थी कि अब वो खुल्लम खुल्ला बदकारी की जो है वो इजाजत और बदकारी की जो है वो लाइसेंस जो है वो मांगने लगे थे। तो नौजवानों को देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बड़े सख्त मुस्तरिब हुए, परेशान हुए कि जो है इस परेशानी और इनकबाज की वजह भी यही थे कि ये कौम का जो फसाद था कि ये औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवानी तल्लुकात कायम कर सकते, तो ये जो हरकत थी पूरे फितरी जो निजाम है अल्लाह ताला को उसके खिलाफ थी, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को नर और मादा की शक्ल में पैदा किया ताकि तमाम अनवा की जो है बका स्पीसीज की और खासतौर पर ह्यूमन स्पीसीज की बका और तसलसल कायम रह सके, और जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने इंसान की जो लज्जत और खुशी रखी है वो उससे भी जो है फायदा उठा सके। ये दो मकसद रखे अल्लाह ताला ने इसमें। तो इंसानों के अंदर इस किस्म की शाजो नादिर बेरारवी तो जो इंडिविजुअल तो तारीख ऐसा है पाई जाती है, लेकिन क्योंकि बाज इंसान बीमार होते हैं इंडिविजुअली, लेकिन पूरी की पूरी कौम जो इस बीमारी के अंदर मुबतला हो जाए, हमगीर तौर पर एक बीमारी एपिडेमिक की सूरत अख्तियार कर ले, पूरे जो है मुआशरे को लपेट के अंदर ले ले, ये सिर्फ जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल दुनिया के अंदर है, या फिर आप 21वीं सदी के अंदर जो है ये अब नई कौम लूत भी इसी के अंदर जो मुबतला हो रही है। तो और ये पूरी जो है बड़ी बड़ी आबादियां, बड़े बड़े शहर और आसपास के सारे इस बीमारी के अंदर मुबतला थे। तो वो नौजवान मेहमानों का सुनकर शहवत जज्बात से दौड़ते हुए बड़ी आए और ढिटाई और बेहयाई के साथ मुतालबा किया कि इन लड़कों को हमारा जो है हमारे हवाले करो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनके कौम के जो है वो तहवर देखे तो फरमाया उनकी जमीर को जगाने के लिए तो उनसे इल्तिजा की कि तुम्हारे अंदर फितरे सलीमा की जो भी रमक बाकी बच गई है उसको अगर तुम रुए कार लाओ, और अगर तुम अपनी जिनसी आसूदगी के लिए कोई ये हरकत करना चाहते हो तो उसके लिए बेहतर ये है बजाय खिलाफ फितरत हरकत करने के तुम औरतों की तरफ रुजू करो, ये मेरी कौम की बेटी है। उन्होंने कहा हा उलाए बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, उससे मुराद है ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे निकाह करके जायज तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करो जिसके अल्लाह ताला ने जाब्ता मुकर्रर फरमाया है। और ये जो लवात और जो है ये जो होमोसेक्सुअलिटी है और हम जिस बाजी का जो अमल है जिनसी शहवत को मिटाने के लिए एक बड़ा ही कबीह नापाक और बेहूदा तरीका है जिस पर अल्लाह ताला का गजब जो है वो जाग उठता है। तो कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मेरी बेटियों से मुराद लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बेटियां जो घर में थी वो मुराद है, लेकिन करीना इसके खिलाफ है क्योंकि हकीकत और शरीयत के अंदर दोनों में ये मुमकिन नहीं है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दो लड़कियां दो बेटियां तमाम कौम जो तमाम अफराद की बीवियां बन सकती हूं। इसलिए लामहाला तौर पर यहां से मुराद कौम की बेटियां हैं, इसलिए कि जो पैगंबर होता है वो अपनी उम्मत के लिए बाप की हैसियत रखता है। और फिर तौरात के अंदर भी ये भी आया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां जो थी वो दोनों ब्याही हुई थी क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने दामादों को कहा जो है वो के जब जो आजाब आने लगा तो उनको कहा कि तुम भी अब इससे निकलो क्योंकि अल्लाह ताला का आजाब आया चाहता है। तो आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला का जो खौफ दिलाया और फरमाया कि अलैहिस्सा मिनकुम रजुलुर रशीद, तुम में कोई भी एक भी कोई सेन आदमी नहीं है, और अब ये उन पर हजुद भी तमाम कर दी कि अगर किसी के अंदर राय बराबर भी हक की हिमायत और हमीयत का कोई एहसास हुआ तो इसके बाद वो जरूर जरूर जाग उठेगा, लेकिन उनका जमीर बेदार नहीं हुआ। उसके साफ मान ये हो कि उनमें से किसी के अंदर भी इंसानियत की और शराफत की कोई रमत बाकी नहीं बची थी, और इस उनके तर्ज अमल ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी। आलू उन्होंने कहा, लकद अलिम था, तो यकीनी तौर पर तू जानता है, मालना हमारे पास हमारे लिए नहीं है, पी बनाते का मिन हकिन तुम्हारी बेटियों में से कोई हक, हक से मुराद है यहाँ पे हाजत, यानी हमें उनसे कोई हाजत कोई लेना देना नहीं है औरतों से। वह इन्ना का और तू जानता है, और इन्न का और बेशक तू लता आलम यकीनी तौर पर जानता है, मा नुरीद हम क्या चाहते हैं। आलू लो उन्होंने कहा, अगर अन्ना अली काश के मेरे पास होती बेकुम तुम्हारे लिए कुवतन कोई कुवत औ आवी या कोई सहा पना, काश मेरे पास कोई जो है कुवत होती या मैं जिसका जवाब दे सकता तुमको, या मेरे पास कोई पनाह होती कि जो आवा यावी अवीयन पना लेना मल जाओ मावा, जैसे मावा होता है वो इसी से निकले वो लफ्ज है, इला रुकन रशीद किसी मजबूत सहारे की जो मैं पना ले सकता, रुकन जो है वो ताकत सहारे और सुतून को कहते हैं। कालू ने कहा, या लू तो एलूत इन्ना रुसलो रब्बे का बेशक हम भेजू हैं तेरे रब के, लई यसलू इलाइक वो तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे, ये वसला यसलू है तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे ये, तो असरे बे अहले का पस लेकर निकल चलो बेहाले का अपने घर वालों को, असरा जुसरा इसरान रात को चलना, इसी से इसरा वल मेराज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रात का सफर है आसमानों को वो इसरा कहलाता है, तो रात का जो सफर है रात को चलना रात को निकल चलो, बेकैत एन जो है टुकड़ा मिना लय रात के किसी टुकड़े में किसी हिस्से में, वला यल तफित और पीछे मुड़कर ना देखो, इल्तफाता यल तफितो इल्तिफातन पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर ना देखे मिन को माफा तुम्हें से कोई भी, इल्लम राता का जो है सिवाय तुम्हारी बीवी के वो जाहिर पीछे रह जाएगी, इन्नहु मुसीबोहा इन्नहा मुसीबोहा वो दर हकीकत उसको आ लगने वाला, मुसीब उस तीर को कहते हैं जो ऐन निशाने पे जाके लगे, उसी से फिर लफ्ज जो है लगने से आ लगने से जो है तकलीफ के मानों के अंदर फिर मुसीबत आता है इस्तेमाल होता है, और उसको आ लगने वाला है मा असाबहुम जो आ लगेगा उनको, यानी जो उनकी कौम को आ लगेगा वो उनको भी आ लगने वाला है, उस औरत को भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को, इन्ना मौइदुहुम बेशक उनका मौइद, मौइद जो आपको पता है एक प्रिस्क्राइब टाइम जो मुकर्रर वक्त अस्सुबह सुबह का वक्त उनका मुकर्रर है उनका तबाही का, अलैसा सुबह बे करीब क्या सुबह करीब नहीं है, फलम्मा जा अमरुना वही आप चौथी मरतबा आ रहा है, फलम्मा जा अमरुना चारों रसूलों के वक्त यानी उनके अजाब का वक्त है, तो अल्लाह फरमाया कि जब आ गया हमारा अमर अजाब का वक्त, जालना तो बना दिया हमने आलिया उसका ऊपर वाला साफे लहा उसका नीचे वाला, यानी हमने उसका ऊपर वाला ऐसा जमीन का उसके नीचे वाला बना दिया जो है उनको जमीन का जो सरफेस थी उसको सब जमीन के सरफेस के नीचे कर दिया, वो अमतरना और हमने बरसाई बारिश अलैहा उन पर हिजारतन पत्थरों की पत्थर बरसाए हमने उन पर, अमतर यम तिरतारन बरसाना पत्थर बरसना जैसे बारिश इसी से मतर फिर जो है वो बारिश के मानों के अंदर भी होता है, मिन सिज्जीलिन उन उन पत्थरों की मंजूद जो तह बतह मिट्टी के थे, उन ये जो सिज्जील है लफ्ज ये जो है ये संगे गिल जो फारसी का लफ्ज है उससे मुअर्रब हुआ है अरबी में आके फिर से सिज्जील बन गया है, मंजूद जो है वो चीज जो तह बतह हुई हुई हो, मुसव्वमा तिन ये पत्थर जो है मुसव्वमा निशान जदा है इन रब्बे का तेरे रब के यहाँ, और जो है सव्वमा जिसम तस्वीर निशान लगाना मुसव्वमा निशान लगो ये निशान लगे हुए निशान जदा है, वह माहिया और नहीं है ये बस्ती मिनज़ालिमीन जालमों से इन मक्का वालों से बबई कुछ दूर, ये उनसे कुछ दूर नहीं है ये बस्ती, इसका तर्जुमा पढ़ दे साथी सॉरी।
उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और तू ये जानता है कि हम चाहते हैं, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने इनसे कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जा, और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है, इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है।
अब देखेंगे ये अखलाकी गिरावट की एक इंतहा का जो है नमूना पेश किया गया है, और इन बदबख्तों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की किसी नसीहत का कोई जो असर नहीं लिया, और इंतहाई ठिठाई से, इंतहाई बेहयाई से अपने खुद से बात इनका इजहार किया और कहा कि तुम तो जानते हो हम औरतों के बारे में कोई ख्वाहिश नहीं रखते, और जो है हम जो है हमें ये खूबसूरत लड़के चाहिए जो तुमने अंदर घर में जो है वो जिनको पनाह दे रखी है। और जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जो है तफसीर के अंदर आता है कि आपने जो है ये जब देखा पूरी कौम का जो है अपन भीड़ अपने घर के बाहर, तो आपने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, और जो है वो बाहर से ये मुतालबा करने लगे थे। तो ये जो है वो ये फिक्र जो बताया गया कुरान ने ये कहा है, तो ये उनकी बदअखलाकी की इंतहा और उनकी जो नफस परस्ती थी और उनकी जो शहवत का जो उरूज था उसकी एक पूरी तस्वीर जो है वो खींच देता है कि किस तरह वो खबासत के अंदर सर ता पैर जो है वो डूबे हुए थे, और वो फितरत और पाकीजगी की राह से किस तरीके से हट चुके थे कि उनकी सारी की सारी रगबत और दिलचस्पी इस गंदी राह से थी, और उसके नफ्स में जो अब तलब जो रह गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इस गंदगी की जो है वो तलब रह गई थी, और ये कहने में भी कोई आर महसूस न करते थे अला लैलान जो है कि हमारे लिए तो ये रास्ता बना ही नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये चाहते हैं हम जो है ये अखलाकी जवाल की और नफ्स के बिगाड़ की ये एक इंतहाई गिरी हुई हालत हो सकती है जिससे नीचे किसी हालत का जो है तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो कौम लूत का ये किरदार मौलाना मौदूदी मरहूम ने जो है रमोल्ला ने लिखा है कि कौम लूत का ये जो किरदार था ये गंदा कीड़ा है, यानी उसकी मिसाल एक गंदे कीड़े की सी है जो गिलाजत में परवरिश पाता है और तय्यबात से उसका कोई मिजाज उसको कोई मुनासबत नहीं है। अगर ऐसा कीड़ा किसी सफाई पसंद इंसान के घर में आ जाए तो वो पहली फुर्सत में फिनाइल डालकर उनको इस वजूद से पाक कर देता है। आप भला खुदा इस जमीन पर इन गंदे कीड़ों के इज्तिमा को कब गवारा कर सकता था। और ये बहुत सही और प्यारी जो है वो तशबीह है, और जिस अल्लाह ताला ने उनको जो है जमीन से मिटाया तो ये जो है चुनाचे हुक्म हुआ आपको हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने खानदान के साथ जहां से निकल जाए, हाँ तुम्हारी बीवी अलबत्ता जो है वो इनमें शामिल नहीं होगी, तो वो भी इनके अंदर अजाब पाने वालों में शामिल जो है होगी। बीवी ने उनकी हजरत इब्राहीम सलाम की दावत को कबूल नहीं किया एक पैगम्बर के घर में भी रहकर, और कुफरों फिस्क में उनका जो है साथ देती रही, और जो है रिवायात के मुताबिक उसने ही मुखबरी की थी कि मेरे हमारे घर के अंदर बहुत खूबसूरत लड़के जो है आई हुई है, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है उसको भी इन मुहज्जिबीन के अंदर जो है वो शामिल जो है वो कर लिया। और इसमें पता चलता है कि पैगंबर की जोजियत का अजीम शान रुतबा भी जो है फिर उसको अजाब से बचाने के लिए काम ना आ सका। तो आपको बता दिया गया कि इस बख्त कौम की मोहलत खत्म हो चुकी, अजाब आया ही चाहता है, और इन्होंने अपने आप को कुफ्रो इनकार की बिना पर अजाब का मुस्तहक ठहरा लिया है। अल्लाह ताला तुम्हारी अब इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा जो तुम अपनी कम हिम्मत कम कुवत होने की बिना पे और जयीफ होने की बिना पे पूरी न कर सकते थे। उनकी हिलाकत का के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, और सुबह कितनी दूर है। तो कौम लूत पर जो अजाब की सूरत आई, जब टूटा अजाब उन पर आया तो बिल्कुल जो है उनको नेस्त नाबूद के रख दिया। अब इस अजाब की क्या सूरत थी इसकी सही हकीकत तो अल्लाह ताला के इल्म में है, लेकिन कुरान पाक के मुताले दूसरे मकाम के मुताले से मालूम होता है इन पर बजक्त व कई तरह के अजाब आए। अजाब के वक्त जमीन के अंदर कोई जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में जबरदस्त जलजला आया, और एक आतिशफिशां ऐसे लगता है कि फट पड़ा, और जलजले ने फिर उन बस्तियों को जो है वो तलपट कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, और आतिशफिशानी के अमल ने उन पर पत्थरों की शदीद बारिश की जिसमें वो दफन होकर रह गए, और जमीन का ऊपर जो था वो जमीन के नीचे हो गया। लेकिन अजाब की ये सूरत महज इत्तेफाक या अमूम नहीं है कि एक बार आतिशफिशां फट पड़ा है जो है वो पंपी जैसे के इलाके के अंदर हुआ, और जो है ये अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ दी, उसने हर पत्थर को नामजद कर रखा था, उस पर नाम लिखा हुआ था उस तबाहकार कि इसने क्या तबाहकारी करनी है और किस मुजरिम को जाके इसने जो है वो लगना है। ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसको जो है अपने साथ जो है मंसूब किया है। यकीनी तौर पर यह अजाब की सूरत है, ये कोई नेचुरल ऐसे डिजास्टर नहीं आया जिसके अंदर कोई कौम तबाह हो गई हो, बल्कि ये जो अल्लाह ताला ने इस अजाब को भेजा अपनी तरफ से। तो कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर इस अजाब को हासिब कहा, यानी पत्थर बरसाने वाली आंधी जिसने उस कौम को इस तरह तबाह किया कि वहां पे खाक से आग सिवा जो है वो कुछ भी न था। اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی قوموں کے انجام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جن کاموں کی بدولت پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے انجام سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مطیعوں اور فرمانبردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اس نے جو احکامات اور جو شریعتیں اور جو دین پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیز بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پوری قوم کا قصہ ہے، اس کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام قصص النبیین پچھلی سابقہ اقوام کے قصوں کے اندر بھی بہت سبق ہیں، ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کے اندر حضرت قوم لوط اور قوم لوط علیہ السلام، ان کی تفصیل، علاقہ، ان کا زمانہ، ان کے حالات، قوم لوط کا کردار، قوم لوط کا دردناک انجام، قوم لوط پر آنے والے عذاب کی تفصیل، مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق جو انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہ کس طریقے سے یہاں پہ اس کا جو ہے ایک سبق ہے اس کا، اسلام اور ہم جنس پرستی جو ہے یہ بہت بڑا اس زمانے کا ایک چیلنج ہے جو اس وقت جو انسانیت کو درپیش ہے، یہ تمدنی چیلنج ہے جو انسان کو جو ہے وہ درپیش ہے، تو اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے اس پہ انشاءاللہ، اسلام اور ہم جنس پرستی پہ، یعنی ہم جنس پرستی کی نسبت اسلام کا کیا موقف ہے، یہ نئی جو قوم لوط جو ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک برپا ہے اس کے جو ہے مضمرات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی، ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور یہ عالمی ہم جنس پرستی کی تحریک جو ہے مسلمان ممالک میں کس طرح نفوذ کر رہی ہے، یہ سارے مباحث ہیں اس سبق کے، اس قصے کے، اس سے ریلیٹڈ ہیں مباحث سارے، انشاءاللہ اس پہ ایک الگ طور پہ زمینہ ہوگا، یہ بہت ہی تفصیل طلب، تحقیق طلب جو ہے چیزیں معاملہ ہیں. اب میں ظاہر درس کا جو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل سے ہم اپنے سبق ہی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو زمینیں ہیں ان قصص النبیین کے، ان کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو اسباق، 40 اسباق تو ہم نے صرف وہ جو ہے جمع کیے باقی معلومات کے ساتھ، حضرت اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم کے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ، اور قوم سمود اور اس سے پہلے قوم عاد، ان کے بھی اسباق کتنے جو ہے ہم نے اکٹھے کیے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں، یقینی طور پر ان کا مطالعہ کیجئے اور بار بار مطالعہ کیجئے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لیونگ ٹاپکس ہیں جس سے ہر مسلمان کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، سب کو جو ہے واسط پیش آ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی ان کو جانیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں تعلیم دیں، اور اسے ہم اس کی جو اس کے اندر جو فتنے پوشیدہ ہیں ان سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.